सुंबल मेरे गांव कैसे हो, मैं तुम्हें सांस सांस करता हूं याद। तुम्हारे बीचों बीच से होकर बहती वितस्ता मेरी शिराओं में बहती है। मैं हर रोज तुम्हारे पुल से छलांग मारकर दूर तक तैरता रहता हूं तुम्हारे आंसुओं में। तुम्हारे उदास चिनारों पर हर शाम उतरती हैं मेरी नींद की चिड़ियां, जो सपनों में आती हैं पहाड़ उतरकर यहां जम्मू के शरणार्थी कैंपों में, और अपनी पीठ पर ले जाना चाहती हैं हमें अपने छूटे हुए घरों को। सुंबल मेरे गांव, आज मेरे बेटे ने तुम पर लिखी एक कविता, जैसे जेल से एक क्रांतिकारी ने लिखा हो डायरी का एक पन्ना। जानते हो उस काली रात में जब भागे थे हम, 4 साल का बच्चा था, वो रात कटती नहीं आज तक। आज भी खेतों खेतों भाग रही अपनी माँ का हाथ पकड़े वो पहुंच नहीं पा रहा उस खौफनाक तारीख से बाहर। सुंबल मेरे गांव, तुम पढ़ो मेरे बेटे की कविता। समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर अग्निशेखर जी हिंदी साहित्य का एक प्रतिष्ठित नाम है। आपके 7 चर्चित कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अभी इसी वर्ष आपका महाकाव्य नीलगाथा भी प्रकाशित हुआ है। आपको कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें केंद्रीय हिंदी निदेशालय से हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार, सूत्र सम्मान, जम्मू कश्मीर राज्य एकेडमी से वर्ष 2010 में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सम्मान तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य शताब्दी सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अग्निशेखर जी की एक कहानी पर शीन शीर्षक से एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है। अग्निशेखर जी कश्मीर के एक विस्थापित कवि के रूप में जाने जाते हैं, तभी उनकी रचनाओं में विस्थापन का दर्द बहुत ही कारुणिक एवं हृदय स्पर्शी तरीके से चित्रित हुआ है। भोगे हुए दर्द को उन्होंने शब्द दे दिए हैं, इसीलिए बात दिल की गहराइयों तक उतर जाती है। साहित्यकार अग्निशेखर जी सन 1990 से कश्मीर से निर्वासित लाखों कश्मीरी पंडितों के मानवाधिकारों और उनकी पनुन कश्मीर में वापसी के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है साहित्यकार अग्निशेखर जी को चुभन के कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए। चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्ते सर, चुभन पर आपका स्वागत है।
नमस्ते, आपका आपने मुझे सुअवसर दिया आपके मंच से अपनी बात रखने का, आपके श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाने का, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
जी सर, और सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, इसी वर्ष आपका महाकाव्य नीलगाथा प्रकाशित हुआ।
उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। आप एक पाठक की दृष्टि से मुझे बधाई दे रही हैं, और कवि के लिए इससे अधिक खुशी की और क्या बात हो सकती है।
जी सर, ऐसे ही आप खूब पढ़ते रहें, आपको यही ईश्वर से कामना है।
धन्यवाद आपका।
और सर, आज आप पहली बार चुभन के कार्यक्रम में आए हैं, तो हम साहित्यकार अग्निशेखर जी से बात करना चाहेंगे, और कुलदीप सुमी से अग्निशेखर बनने तक के सफर के बारे में सर हमें बताएं।
वो बताऊंगा, लेकिन नाम आपका बहुत रोचक है, चुभन। और
सर,
बात कर रही हैं कि आप बात करेंगे तो मतलब आपने चिकोटियां काटनी है ताकि चुभन महसूस हो। मुझे अच्छा लगा तुम्हारा ये शीर्षक चुभन।
इतनी मेरी हिम्मत नहीं है सर।
तो नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं हास्य में ये बात कर रहा हूँ विनोद से। और देखो, ये शब्द की शक्ति होती है
जी।
और शब्द की शक्ति बहुत अपार होती है, और वो संवेदनाओं का विस्तार करती है, भावनाओं का प्रसार करती है, और और आघात भी करती हैं जहां उसे आघात या प्रहार करना हो। ये शब्द की बहुत मारक शक्ति है।
जी
मैं
सर
उसकी
बिल्कुल
वो अभिधा व्यंजना जो भी
लक्षणा जी बिल्कुल
वो लक्षणा वगैरह वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो
जी
आपने
सर
पूछा कि कुलदीप सुमली से अग्निशेखर की यात्रा एक सामान्य युवक जो कॉलेज में पढ़ता था और जिसका नाम कुलदीप रखा गया है, सुंबली हमारे गांव का नाम सुंबल है तो इसलिए सुंबली कहलाए,
जी
और
जी
1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया जिसे कबायली हमला कहते हैं, उसके चलते जो विस्थापन हुआ था उस जमाने में हमारे अभिभावकों का, माता का अपने गांव से, पिता का अपने गांव से, तो हम श्रीनगर पहुंच के भट्ट से सुंबली कहलाए। तो कुलदीप
जी
सुंबली के नाम से मैं पढ़ता रहा यूनिवर्सिटी से लेकर के पीएचडी सारा उसमें। उसके बाद जब मुझे लगा कि मुझे कवि या लेखक बनना है और उसके लिए जो मैं पढ़ता रहा जानता रहा, तो मुझे ये लगता रहा कि शायद उस समय की समझ थी कि बिना उपनाम के शायद आप लेखक नहीं बन सकते, कवि नहीं बन सकते। तो इस
जी
तरह मेरे जीवन में मेरे नाम में अग्निशेखर आया, और ये अग्निशेखर जब आया तो मुझे एक ही अर्थ इसका मालूम था कि अग्नि और शेखर दो शब्द पद बनकर अग्निशेखर बनता है यानी शिव, ये मुझे था। लेकिन बाद में मुझे जब मैंने अध्ययन किया तब मुझे पता चला कि अग्निशेखर का अर्थ केसर होता है, केसर का फूल होता है। तो मुझे इस तरह से अग्निशेखर के दोनों अर्थ यानी शिव भी, कश्मीर चूंकि शैव भूमि है दार्शनिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि उससे जोड़ती है मातृभूमि कश्मीर के साथ, और केसर चूंकि कश्मीर में होता है तो उससे भी, तो मुझे अतिरिक्त खुशी हुई और
बिल्कुल
मैं कवि बनने की जो मेरी यात्रा है उसमें अग्निशेखर बनना मेरे लिए एक मतलब कहना चाहिए एक घटना है जो सुखद रही और नाम बहुत चला, उसको स्वीकार किया, और यूं मेरा ये नाम मेरे उन दिनों के तत्काल कानपुर के एक लेखक मित्र है, आज बड़े वरिष्ठ कथाकार हैं बलराम जी, उनका
जी
दिया हुआ सुझाया हुआ नाम है अग्निशेखर।
जी हम भी सर आपको अग्निशेखर के नाम से ही जानते थे। मैंने भी अभी जाना कि आपका कुलदीप सुंबली नाम था और
ये तो आपने
अग्निशेखर।
मुझे याद दिलाया कि मैं कुलदीप सुमली भी हूं,
जी
मुझे
सर
स्वयं पता नहीं है, ये याद नहीं है अब चूंकि
जी
अग्निशेखर ही हो गया है ना।
बिल्कुल नाम को आप सार्थक कर रहे हैं सर। दोनों नाम केसर की तरह आप पूरे छा गए हैं बिल्कुल। और अग्निशेखर तो शिव का नाम ही है।
ये आपका बड़प्पन है।
नहीं सर
और मैं ये कहूं कश्मीर के बारे में, महाकवि बिल्हण जो
जी
कश्मीर से थे और संस्कृत के महाकवि थे, उन्होंने कश्मीर की बात करते करते एक उन्होंने चरित लिखा है विक्रमांक देव चरित। ये
जी
उन्होंने
जी
कर्नाटक में राजा, कर्नाट के राजा जो थे उनके उनका एक चरित्र लिखा है विक्रमांक देव चरित। तो उसमें कश्मीर का वर्णन करते हुए कहते हैं, कश्मीर ऐसी जगह है मैं जहां से आया हूं जहां कविता का विलास और केसर दोनों मिलते हैं, अन्यत्र नहीं मिलते हैं कहीं। तो इस तरह ये मेरी धरोहर है, केसर
वाह
भी और कविता भी।
वाह बहुत बड़ी बात कही सर आपने।
जी
और सर आपके कविताओं में आपके साहित्य में ज्यादातर निष्कासन का दर्द ही है, तो इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, निष्कासन की पीड़ा, त्रासदी या विलोपन, विलुप्त होने की आशंका या क्रोध, प्रतिरोध, ये सब 90 के दशक के इधर बाद में आया है,
जी
जब कश्मीर से जो आतंकवाद जो मूलतः जिहाद है और पाकिस्तान समर्थित है, और जो कश्मीर को सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक भारत से काटकर अलग करके जो एक वहां इस्लामी राष्ट्र निजामे मुस्तफा जिसे वो लोग कहते हैं बनाना चाहता है, तो उसके इधर जो वहां की अल्पसंख्यक जो मूल निवासी कश्मीरी पंडित हैं जिनका
जी
हजारों हजार वर्षों का इतिहास है, पीछे निरंतरता है, उनको जब निकाल बाहर किया गया और उनकी जलावतनी जब हुई, निष्कासन हुआ, निर्वासन हुआ, उसके बाद ये सारी चीजें जो सारे अनुभव जो साहित्य में आए वो निर्वासन चेतना चेतना है, और वो निर्वासन चेतना बहुलता में विपुल उसकी अभिव्यक्ति हमारे साहित्य में हुई। जो जितने भी लोग कश्मीर से निर्वासित होकर हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, कश्मीरी में साहित्य का निर्माण करते हैं, उन्होंने जो साहित्य लिखा उसमें ये निष्कासन, जिसे आपने कहा निर्वासन कहा,
जी
उसकी
जी
त्रासदी विडंबना व्याप्त है। और वो लिख भी क्या सकते हैं, क्योंकि
बिल्कुल
यदि आप लोकोन्मुख, यदि आप लोगों से जुड़े, लोक से जुड़े, और राजनीतिक संकट जो आया है, जिस समय और संवेदना के कवि हैं, यही तो लिखेंगे आप। ऐसे में कोई फिल्मी गाने थोड़ी लिखेंगे। तो ऐसे में 90 के इधर अब ये पूछा जा सकता है कि 90 से पहले क्या लिखा जा रहा था।
जी
90 से पहले का जो अगर साहित्य देखा जाए, मैं अगर अपने साहित्य की बात करूं, तो
जी
उसमें आपको ये जो 90 में हुआ निर्वासन हुआ, उसकी एक पूर्व, उसका अनुमान, उसका पूर्व आभास,
जी
पूर्वाभास आपको मेरे साहित्य में मिलेगा, मेरी कविताओं में मिलेगा, कि जो कुछ 90 में हुआ उसकी आहट एक कवि के दृष्टि से मैं वर्षों पहले से देख रहा था, लिख रहा था, और वो छप भी रहा था। मतलब आपके सुनने वालों के लिए मैं ऐसे कहूं कि मेरी एक कविता है जो 1982 में मैंने लिखी, और 83 में, एक वर्ष के बाद ही वो जम्मू कश्मीर भाषा साहित्य और कला की अकादमी जो है हमारी,
जी
उसकी
जी
पत्रिका शिराजा है, वो हिंदी, शिराजा उर्दू में भी निकलती है पत्रिका, हिंदी में भी उर्दू में, जो हिंदी की पत्रिका है उसका एक 83 में आलोचना अंक निकला, और उस आलोचना अंक में 83 में एक अकेली कविता अग्निशेखर की छपी, राजा तेरी नगरी में चोर, ये उसका शीर्षक था। उसमें
जी
आप, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, उस कविता को जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे, आज पढ़िए, वो छपी हुई है, प्रकाशित है, तो
जी
आपको उसमें जो कुछ 90 में हुआ, 90 के बाद हुआ, उसकी स्पष्ट आपको छायाएं, अर्थ छायाएं, बिंब, काव्य बिंब मिलेंगे। उसमें निर्वासन मिलेगा आपको, उसमें निर्वासन के बाद छूटा हुआ घर बार, सूनापन, निराशा, हताशा, गुस्सा, ये सब उसे मिलेगा। इतना ही नहीं, मेरी एक कविता है मिहिरकुल आ रहा है, ये भी उन्हीं दिनों की कविता है, ये
जी
मुझे लगता है कि 86-85 के आसपास की कविता है, ये भी शिराजा में छपी थी। मिहिरकुल 6वीं-7वीं शताब्दी में एक हून, यानी एक तुरुष्क, मंगोल, एक बर्बर आक्रमणकारी हुआ है, उसने आक्रमण किया, और उस आक्रमण के चलते उसने कितना नरसंहार किया, कितनी बर्बरता की, जो बर्बरता की सभी हदें पार करता हुआ, उसके बारे में सामान्य रूप से लोग ये जानते हैं कि ये वही खोखार आक्रमणकारी है जिसने मतलब जो इस बात से परपीड़क इतना था कि उसने जिन हाथी उनके बेड़े के साथ थे, उन हाथियों को पर्वत से नीचे ढकिया कर उनको मार दिया, और उनकी तड़पता हुआ देखकर खुश होता था उससे।
जी
तो ये इतना बर्बर राजा था। तो मैंने कविता लिखी मिहिरकुल आ रहा है, बालश्कर बंदूक उठाओ, कि मिहिरकुल आ रहा है बालश्कर, और वो आएगा, जो आ रहा है ये आहट है, कवि बता रहा है कि आतंकवाद, जहाद, ये बर्बरताएं फिर से आने जा रही। और मेरी ही कविताओं में, 90 से पहले की कविताओं में आपको ऐसी उपमाएं, ऐसे रूप मिलेंगे, यहाँ साफ साफ कवि कहता है कि घाटी जमीन की तहों को फाड़ता हुआ घाटी का पिशाच एक बार फिर उठ रहा है, ठट्ठाकर हंस रहा है। ये घाटी का पिशाच कौन है, ये आख्यान में जब जाएंगे कश्मीर के, तो कश्मीर कभी कहते हैं कि आख्यान के हिसाब से कि एक सतीसर झील थी, और उसमें एक राक्षस था जिसका नाम जलोद्भव था, उसने जो आतंक तब के नागों पर, तब के लोगों पर ढाया, तो उसकी स्मृति में उसको रूपक बना करके मेरी एक कविता थी, छपी हुई है, प्रकाशित, कश्मीर से कन्याकुमारी तक,
जी
कोई क्यों नहीं बोलता कबीर की भाषा में कि घाटी में या घाटी का पिशाच फिर से उभर रहा है। तो मैं ये आपके प्रश्न के उत्तर में बता रहा हूं कि 90 से पहले जो कुछ 90 के बाद हुआ उसका पूर्वाभास, उसका पूर्वानुमान मेरी कविताओं में आपको मिलेगा। अब मैं अपने को मेरी ही कविताओं में मिलेगा ऐसी बात भी नहीं है।
जी
कई हमसे वरिष्ठ कवि थे उनकी कविताओं में, हमसे वरिष्ठ थे मोहन निराज जी, उन्होंने कहा था कि स्वर्ग में रहकर हम स्वर्गवासी हो गए, यानी हम
वाह
कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं। अब जब स्वर्ग में रहते हैं तो हम स्वर्ग के निवासी नहीं, स्वर्ग में रहकर हम स्वर्गवासी हो गए। बात बासी हो गई, देव की दासी जो बनी देवदासी हो गई, स्वर्ग में रहकर हम स्वर्गवासी हो गए, ये मोहन निराज जी ने बोला। और इसी तरह शशि शेखर तोषखानी थे, उनकी उनके लिए उनकी कविताओं में भी चीख चीख कर ये पूर्वानुमान है। और ये भी बिंब आते हैं हमारे जो अग्रज कवि थे कि ललजद जो कालजयी कवयित्री कश्मीर की हैं, कश्मीरी साहित्य की आदि कवित्री जी, कहा वो कहते कि ललजद की लाश सड़ रही है लाल चौक पर, तो ये क्या समझा रहे थे। इसी तरह कश्मीरी में जो कवि लिख रहे थे, ये तो हिंदी की मैंने बात की, कश्मीरी में भी कवि जो
जी
थे वो भी ये संकेत दे रहे थे। कहानियों में मिल रहा है, हमारे हरिकृष्ण कौल एक कहानीकार हुए कश्मीरी में, उन्होंने एक कहानी लिखी न वन्य लायक कथ, ऐसी बातें जो कहने लायक नहीं है, न कही जा सकने वाली बातें। तो संकेत वहां का कवि दे रहा था, क्योंकि उन्हें अनुवाद के माध्यम से आप तक पहुंचना था। अग्निशेखर या मेरे जैसे हिंदी के लोगों को, हिंदी में लिखते थे कश्मीर में, उनके लिए समस्या नहीं थी, अब सीधे हिंदी में लिखते थे, हिंदी में जाती थी दूर तक। अब बात दूसरी है कि आप तक वो किस दृष्टि से पहुंचती थी, आप उसको समझना चाह रहे थे या समझकर उससे बचना चाह रहे थे। तो 90 से पहले पूर्वानुमान है मेरी कविताओं में, और 90 के बाद निर्वासन की चेतना है जो आपने अभी कहा।
तो सर, जैसा आपने बताया कि आप भी लिख रहे थे या और लोगों ने भी पूर्वानुमान कर लिया था, तो इस बात आता कि कभी इस चीज को जिन लोगों को समझना चाहिए था वो लोग क्यों नहीं समझ।
जी वो तो सारी कविताओं में हमारे यहाँ जो एक अवसाद मिलेगा आपको, एक निराशा मिलेगी
जी
आपको। अब निराशा के चलते ही आपको जीना है, आप कर क्या सकते हैं। एक कवि के बस में क्या है, लिखना। एक कवि के बस में क्या है, लिखकर अपनी व्यथा को, सच को कहना। और वो सच कहाँ तक जाता है, और फिर उसकी नोटिस अगर नहीं ली जाती है, जैसे कि 90 के बाद जितना भी हमारा निर्वासन चेतना का साहित्य है, ये वास्तव में जिनोसाइड की चेतना का साहित्य है। ये हिंदी वालों के लिए, अन्य भाषा भाषियों के लिए थोड़ा भारी शब्द दिखेगा उनको, क्योंकि उन्हें अनुमान नहीं है
जी
कि कश्मीर में जो हुआ वो जेनोसाइड है, वो संहार है, जनसंहार है। तो जब जनसंहार है और धर्म के आधार पर आपको निष्कासित किया जाता है, तो लेकिन सरकारें और बुद्धिजीवी वर्ग और लेखक वर्ग और ये मानवाधिकारवादी लोग जो भी दिल्ली में सक्रिय रहे या हैं, ये लोग हमारी समस्या को उसके वास्तविक नाम से नहीं पुकारते थे, नहीं पुकारते हैं, नहीं पुकारेंगे, ये लोग नहीं करेंगे। दिल्ली के मानवाधिकारवादी, दिल्ली के पत्रकार, दिल्ली के न्यायविद, डफलियां बजा बजा कर विरोध करने वाले इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये
जी
कश्मीर में जो घटित हुआ है उसको, उस समस्या को उसके वास्तविक नाम, जिसे हम कहते हैं, हम जानते हैं ना, हम भुक्तभोगी हैं कि
जी
वो
जी
जिहाद है, वो भारत विरोधी जिहाद है, वो आजादी के नाम पर भारत के विखंडन की एक प्रक्रिया है। तो ऐसे में जब आप बात नहीं करेंगे, और जब हम लोग, मैं कवि के रूप में कहता हूं या मेरे मित्र जो कवि मित्र हैं,
जी
साहित्यकार मित्र हैं, जब वो लोग हर उस अन्याय का विरोध करते रहे कविताओं में, कहानियों में, जिसके प्रति सब लोग करते थे, जब हम लोग फिलिस्तीन को पर लेकर कविताएं लिख सकते हैं, जब हम लोग अब साउथ अफ्रीका पर लिख सकते हैं, जब हम लोग भारत में कहीं भी घटित किसी भी अमानवीय अमानुषिक कृत्यों को लेकर लिखते हैं, विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते रहे, तो लेकिन जब हमारा नरसंहार हुआ, जब हमको हमारे घरों से बाहर कर कर दिया गया, आप कल्पना करिए ना, आप सुन रहे हैं ना मुझे, आप ये आप इस तरह कल्पना करिए कि एक प्रदेश से
जी
कि वहां की एक समूची जाति को, एक समूचे समुदाय को आप बाहर करते हैं, और बिना किसी कारण के, कारण ये है कि उन्हें आप पसंद नहीं है, उनके लिए आप अन्य हैं, उनके जो उन्हें उनका उद्देश्य है कश्मीर को काटना, उसको निजामे मुस्तफा मुस्लिम राष्ट्र बनाना, और पाकिस्तान समर्थित एक आतंकवाद जो चला रहे हैं उनके रास्ते में, आप उनको लगता है कि आप बाधा हैं और आपको बाहर कर दिया जाता है। क्या ये किसी अन्य देश में संभव है कि पूरा देश चुप रहेगा?
बिल्कुल,
बुद्धिजीवी चुप रहेंगे, विचारक चुप रहेंगे, न्यायविद चुप रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ रहे। तो इसलिए वो जो आपने बात उठाई, वो गुस्सा, वो अवसाद, वो प्रतिरोध भी आपको हमारे साहित्य में मिलेगा, क्योंकि हमारा साहित्य ठीक ठीक अपने शत्रु को पहचान, तो उसमें शत्रु बोध स्पष्ट है और अभिव्यक्ति भी स्पष्ट है, बिना किसी संकोच के, डर के, और बिना किसी पक्षपात के, जो जो है सो है,
होना भी चाहिए सर।
जी
जी बिल्कुल। तो सर कोई कविता आप सुनाना चाहें इस विषय पर?
ये विषय तो सारा यही है मेरा तो सारी किताबें मेरी भरी पड़ी हैं इसी से। अब देखिए, अब जब आप अपने शत्रु को पहचानते हैं, एक कविता मैं आपको सुनाता हूं, मेरी खाल से बने दस्ताने। खाल यानी चमड़ी,
जी जी,
यानी मेरी चमड़ी से बने दस्ताने, शीर्षक है कविता का, ये मेरे मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, मेरा दूसरा कविता संग्रह है
जी,
उसमें से है। मेरी खाल से बने दस्ताने ये शीर्षक है
जी।
दस्तानों में छिपे हैं हथियारों के हाथ, दस्तानों में छिपे हैं हथियारों के हाथ, एक दिवंगत आदमी कह रहा है हर किसी के सामने जाकर, ये दस्ताने मेरी खाल से बने हुए हैं। एक दिवंगत आदमी कह रहा है हर किसी के सामने जाकर, ये दस्ताने मेरी खाल से बने हुए हैं। खुश हैं हत्यारे, खुश हैं हत्यारे कि सभ्य लोग नहीं करते आत्माओं पर विश्वास। छोटी सी कविता तुमको मैंने एक त्रासदी की सुनाई, कि हम अपनी त्रासदी लेके जाते हैं, जो ये तथाकथित शालीन सभ्य इलीट लोग हैं, संभ्रांत बुद्धिजीवी लेखक, ये लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। हम उनको कहते हैं यार ये हथियारों के खून, हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं, वो हमारी बात पे विश्वास नहीं करते। तो ये उस पीड़ा की मैंने आपको कविता सुना।
जी सर, और सर आपकी पुस्तक थी जवाहर टनल, उसके लिए आपको कला संस्कृति एवं भाषा एकेडमी की ओर से अवार्ड भी दिया गया था, आपने उसे लेने से भी मना कर दिया था इसी वजह से।
दो मतलब 2010 का जम्मू कश्मीर राज्य की अकादमी जो हमारी है, उसका सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार मुझे, यानी मेरी पुस्तक जवाहर टनल को, जैसे आपने कहा, उसके लिए घोषित हुआ।
जी।
और नियम ये था कि जो हमारी अकादमी है उसके अध्यक्ष पदेन होते हैं मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री थे उस समय 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला। और मेरे मुझे ये स्वीकार नहीं था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति को भी हम लाखों निर्वासित अपनी तबाही जलावतनी निष्कासन का एक प्रमुख कारक तत्व मानते हैं, यानी हमारी तबाही के पीछे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक पॉलिटिक्स रही कश्मीर में, जिसकी परिणति हुई हमारे निर्वासन में, तो मेरी आत्मा ने यह स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा एक स्वाभिमानी लेखक के नाते, एक एक लेखकीय विरोध और प्रतिरोध के नाते, मैंने प्रेस में मीडिया में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मैंने कहा ये पुरस्कार मैं नहीं लूंगा, एक विरोध में, और किसके विरोध में, कि मेरे साथ मेरे लोगों के, मेरे समुदाय के लोगों का जो जिनोसाइड हुआ, जो वहां से देश निकाला दिया गया और स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत में जो ये घटित हुआ, जिस पर लोग चुप रहे, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए मैंने उसका विरोध किया। जवाहर टनल पर मिले एक शायद 50,000 51,000 रुपए का पुरस्कार है, वो धनराशि का मैंने नहीं लिया।
जी जी बिल्कुल सर।
अब बताइए, अब मैंने नहीं लिया, इस पे किसी ने चर्चा नहीं की।
जी
अब मेरी एक जो जिस संग्रह से मैंने अभी आपको कविता सुनाई, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी।
जी।
जानते हैं, मैं सारा शरणार्थी जीवन से, जहां जम्मू से जोखिम उठा करके, बेस बदल करके कश्मीर गया, क्योंकि वहां उन दिनों संग्रामपुरा में उस गांव में हिंदुओं की हत्या की गई थी। हम एक शिष्टमंडल लेके कश्मीर गए, उसमें मैंने बेस बदल के ये किताब उठाई और इसका लोकार्पण किया कश्मीर में, श्रीनगर में, अपने मोहल्ले जिसका नाम हब्बा कदल है। और हब्बा कदल, कदल यानी पुल होता है, हब्बा कदल वाले पुल पर जाकर के मैंने नदी में विसर्जित की अपना कविता संग्रह, मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, और उसके साथ मेरे कवि मित्र का संतोषी का भी संग्रह था, वो विसर्जित करके मैंने लोकार्पण किया। अब मुझे बताइए, कई लोगों ने कहा, इस पे कविताएं भी लिखी मेरे कई मित्रों ने और कश्मीरी में लिखी गई। अब मुझे बताइए, यही घटना अगर किसी फिलिस्तीनी कवि ने की होती, यही इस तरह का लोकार्पण अगर किसी साउथ अफ्रीका के किया होता, अगर किसी पोलिश कवि ने किया होता, तो आपको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ हिंदी पत्रिकाओं में संपादकीय भरे जाते, विशेषांक, ये चर्चाएं होती बहुत। देखो जी, किसी ने मेरी इस घटना का नोटिस नहीं लिया और बात तक नहीं की, क्योंकि हमारा सच उनको सूट नहीं करता है। हमारा सच उनको, वो झूठ कहना चाहते हैं, इसको बतलाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं मेरे सच को। तो इसी तरह जब जवाहर टनल पर मैंने नहीं लिया पुरस्कार, तो ये कोई चर्चा नहीं बना, और देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। जब आप लाखों, 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं के निर्वासन, जो मार मार कर उनको बाहर कर दिया गया, उनकी करोड़ों अरबों की आपने संपत्ति हड़प ली, जला डाली, लूट ली या बेचनी पड़ी, और उनकी बहु बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हुए, अपहरण हुए, जिंदा चीरी गई, बलात्कार हुए, मारे गए, 1,000-1,500 लोगों को सिलेक्टिवली चुन चुन के मारा गया, फिर सबको निकाला गया, ये भी कोई समाचार नहीं बना
जी।
ये कितना बड़ा समाचार होना चाहिए था, ये हमारी भारतीय राजनीति के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, हमारे बुद्धिजीवियों के लिए, हमारे लेखकों के लिए, हमारे पत्रकारों के लिए, मानवाधिकारवादियों के लिए, ये कोई समाचार ही नहीं। चुप थे उसमें, और जबकि ये चुप्पी न केवल एक चुप्पी है, बचने का तरीका है, ये चुप्पी हमको जो लगता है ये समर्थन है हमारे शत्रुओं का।
बिल्कुल बिल्कुल है सर।
और इसलिए मैंने कहा कि जो आपने कहा ना, हमारी नोटिस नहीं ली, दुख तो होता है, लेकिन दुख से ज्यादा ये होता है कि हम किसी भ्रम में थे कि जो लोग रात दिन चिल्लाते हैं अन्याय के खिलाफ, हमको लगता हम भी उन्हीं की दस्ते में थे शामिल। मैंने स्वयं नेल्सन मंडेला पे कविताएं लिखी है, मेरी फलिस्तीन पे कविताएं हैं, मैंने किस अन्याय पे कविताएं नहीं लिखी, लेकिन जब मेरे साथ हुआ तब आप चुप हो गए। तो इस तरह दुख के अलावा, दुख से ज्यादा हमको एहसास हुआ कि हम कहां और किन के बीच खड़े हैं
जी।
ये सच्चे लोग नहीं है, ये एक तरफावादी लोग हैं, ये कबीर कबीर बहुत करते हैं, लेकिन कबीर की तरह भावना जी, ये लोग निर्भय नहीं है।
जी,
कबीरा
जी।
खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, इनके हाथ में लुकाठी है, लेकिन वो एक तरफा लुकाठी है। और मैं आपको कवि के नाते बोलूं कि इस देश में जब मैं लेखकों की सत्ता देखता हूं, राज्य सत्ता होते हैं लेखक, ऐसा सोल्जेनित्सिन ने कहा था रूसी कवि ने, ये विपक्ष होता है, लेकिन मेरा जो ये दूसरी सत्ता है, जो विपक्ष है हमारा लेख, मैंने इनमें देखा कि ये समूचा विपक्ष नहीं है, ये एक तरफा, ये अपनी पार्टी के एनकों से देखते हैं, ये विचारधाराओं से प्रेरित हैं। दिखते तो स्वतंत्र हैं, कहेंगे हम स्वतंत्र हैं, मुक्तिकामी हैं, लेकिन ये अपनी जो उनके ऊपर पीछे रिमोट कंट्रोल इनकी पॉलिटिकल पार्टीज का है उसी से प्रेरित होते हैं। तो
जी
इसलिए दुख से ज्यादा हमको एक एहसास हुआ, एक बोध हुआ कि हमारा हमारे समय का समकालीन जो लेखक समाज है ये स्वतंत्र स्वायत्त नहीं है।
जी संवेदनाएं मर चुकी हैं सर, जैसे लगता है एकदम।
कहना चाहिए कि जब आप देखो एक तरफा भी हैं, आप गुजरात पे बहुत चिल्लाए, बहुत चिल्लाते रहे, विशेषांक निकाले, जुलूस निकाले, जलसे निकाले, ठीक है, आपको लगा ये गलत है, आपने किया और
अभी
हमने भी साथ, आप हमने भी,
अभी तक हो रहा है सर, अभी तक लकीर
हमने भी साथ दिया,
जी।
लेकिन आप तब भी आप गोधरा पे चुप रहे, लेकिन गोधरा के बाद जो घटनाक्रम है उस पे ही आप डफलियां बजाते हैं, विरोध करते रहे, ठीक किया आपने किया, उसमें कोई मुझे चिंता नहीं है, मैंने भी जो जहां जहां गलत है वहां वहां मैंने भी किया।
जी
आप मुझे ये बताइए, हमसे हमारे 90 में हम वार हुआ, हमसे पहले 6 साल पहले आपने दिल्ली कानपुर की सड़कों पर सिखों का नरसंहार किया,
जी
उस पर कौन क्यों नहीं बोले आप? कौन बोला? आप उस पर भी नहीं बोले क्योंकि आप चयनित या चुनिंदा विषयों पर, चुनिंदा कौमों पर, चुनिंदा धर्म पर, चुनिंदा वर्ण पर, चुनिंदा प्रदेश पर, भाषा पर, और जो चुनिंदा है, जो आपको सेफ लगता है, सुविधाजनक आप बोलते हैं, तो इसलिए ये जो एक तरफावादी हैं, कबीर एक तरफावादी नहीं थे, वो जितना मंदिर जो बनारस उस समय के जो धार्मिक रूढ़िता थी, जितना वो मंदिर पाहन पूजे हरि मिले कहते हैं, तो
जी
उतना ही वो कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लगी बनाए, उसने
जी
उसने उसने लिहा उसने एक विषय पे लाठी नहीं चलाई और दूसरे पे चुप चुप रहे। हमारे
जी
समय के लोग एक तरफावादी हैं, पक्षपाती हैं, और हमारे मामले में हम देखें तो हमारे शत्रुओं के समर्थक सिद्ध हो जाते हैं।
जी कबीर ने तो सर आंखों की देखी कही, लेकिन कश्मीरी पंडितों के ऊपर आंखों की देखी बिल्कुल आई ही नहीं, मतलब हम लोगों तक भी नहीं। मैं अपने लिए भी बताना चाहूँ तो मुझे भी नहीं कुछ पता था सर, आप लोगों से बात करके अब मेरी जानकारी हुई है कि इतना अत्याचार हुआ है वहां पर।
भावना भावना जी, आपने जिस संदर्भ में भाव की, एक तो होती आंखन देखी, तुम
जी सर
कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी,
जी
ये तो देखना जो है ना कबीर का,
जी
इस देखने में है कि वो साक्षी है, वो साक्षी
बिल्कुल
भाव है ना,
जी
या मेरे यहां साक्षी भाव नहीं है, जब मैं बात करता हूं मैं आंखन देखी नहीं कहता हूं, मैं भुक्त भोगी हूं, मैंने
होगी
जो भोगा है
बिल्कुल
उसे कहा है, मेरा तो और ज्यादा प्रामाणिक है।
बिल्कुल सर
और जो आंखन देखी कश्मीर को लेके है, जो लोग ये जो एनजीओ चलाने वाली एक टीम खड़ी, एक एक गिरोह खड़ा हुआ है, कि शब्द मैं कह रहा हूं,
बिल्कुल
मेरे
सर
पास तीक्ष्ण अनुभव है, ये जो एनजीओ वादी लोग होते हैं, ये जो बड़े इलीटिस्ट होते हैं, ये जो गरीबों दलितों और सब ऑल्टर लोगों की बातें, बड़ी बड़ी बातें करते रहते वाले लोग होते हैं, इनके
जी
पास फंडिंग कहाँ से आती है? ये विदेशी फंडों से, विदेशी आर्थिक सहायता से, सरकारी सहायताओं से, अन्य स्रोतों से पोषित लोग
जी
जब कश्मीर जाते हैं, और ये जो आंखन देखी देखते हैं, इनकी आंखों को जो दिखता है या जो देखना ये चाहते हैं,
जी
एक तो होता है जो आपको दिखता है आप वो कहेंगे नहीं, फिर ये होता है कि जो आप देखना चाहते हैं, तो
जी
इन्होंने जो देखना चाहा वही वही आंखन देखी इनकी है,
बिल्कुल
और जो इन्होंने देखना चाहा वो देखिए कैसे। मैं एक छोटी सी मिसाल से आपके सुनने वालों से कहता हूं,
जी सर बिल्कुल
जब
बताइए
हमको निकाल दिया गया, वहां से निकलना पड़ा, हम जम्मू पहुंचे, टेंटों में, कैंपों में, सड़कों पर, फुटपाथों पर, स्कूलों में, पाठशालाओं में, गुरुद्वारों में, धर्मशालाओं में, किराए के मकानों पे, यत्र तत्र, जो अफरा तफरी का जमाना था उसमें थे, तब ये तथाकथित मानवाधिकारवादी कश्मीर गए
जी
और मुझसे भी मिले, मैं गौतम नवलखा का नाम देता हूं, वो मुझसे मिला, मुझसे स्वप्न घोष या और क्या था उनका नाम, कई लोग मिले मुझसे मिले, मैंने उनको मिलाया लोगों से,
जी
और उसके उन्हें स्वयं देखा, उसके बाद जब कश्मीर चले गए तो कश्मीर में जो उनको देखना था, जो उन्होंने देखा, क्या देखा, मान लीजिए मैं एक घटना आपको सुनाता हूँ।
जी
एक मोहल्ले में ये लोग मानवाधिकारवादी लोग उन कश्मीरी पंडित बचे हुए जो निकल नहीं पाए थे तब तक, उनके
जी
पास जाते हैं और PUCL वाले कहलाते हैं, ये उनके पास गए और वहां के स्थानीय लोगों को साथ लेकर,
जी
जिनसे डरकर लोग भागे थे, स्थानीय लोगों का साथ था आतंकवादियों को, जिहादियों को। अब आप मेरे घर में आ रहे हैं या आप हैं वहां, आपके पास कुछ दिल्ली से मानवाधिकारवादी एक दल आया हुआ है ये देखने के लिए कि कश्मीर में वास्तव में क्या हुआ, क्या आतंकवाद की वजह से भागे। उन दिनों तो ये डफली बजाते थे, उनको तत्कालीन गवर्नर ने निकाला, ऐसे बेसिर पैर पे झूठ
जी
बोल रहे थे। एनीवे, अब
जी
फिर आपके घर आते हैं, फिर आपसे उन्हें बेस बदल कर आए हुए आतंकवादियों या उनके समर्थकों की टीम के साथ आपसे पूछा जाता है, डॉक्टर भावना जी आपको यहाँ कैसा लगता है, डर लगता है क्या आपको, आपको कोई शिकायत है यहाँ के लोग मुझे, आप क्या कहेंगे ऐसी हालत,
जी
क्या सच कह पाएंगे आप उनके सामने?
बिल्कुल नहीं।
आप कहेंगे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं। कहते हैं फिर ये जो बाकी कश्मीरी पंडित लोग भाग गए तो वो क्यों भागे? हमको सिर्फ कुछ पता नहीं है वो क्यों भागे, लेकिन हमको तो कोई डर नहीं। ये जो हमको कोई डर नहीं है, ये बात लेकर के आप दिल्ली में अपनी रिपोर्ट में कहते हैं, वहां तो हम कश्मीरी पंडितों से मिले जो वहां है, उन्होंने कहा हमको कोई डर नहीं है, इसलिए ये साबित होता है कि इनको जगमोहन ने निकाला। तो इतना
जी
बड़ा झूठ, इतनी बड़ी
जी
मक्कारी, इतनी बड़ी धूर्तता, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, खासकर उन लोगों से जिन्हें मैं कश्मीर में बैठकर एक आदर्श प्रतीक पुरुष के रूप में मानता जानता था। हमारी आंखें खुल गई और ये निर्वासन का साहित्य जिसका जिसकी जिसमें मेरा भी थोड़ा बहुत भूमिका है, मैंने
जी
जो साहित्य रचा है, ये आंखें खोल देने वाला साहित्य है।
बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत नहीं, आपका काफी साहित्य है सर, आपने बहुत अच्छा लिखा है। और आप अभी तो आपका ये जो नील गाथा आया, इस पे
देखिए,
भी कश्मीर की संस्कृति पर इतना लिखा।
सबसे पहला निर्वासन में सबसे पहला कविता संग्रह मेरा ही आया 1991 में, किसी भी समय,
जी
ये संभावना प्रकाशन से आया। उसके
अच्छा
बाद 1996 में मुझसे छीन ली गई मेरी नदी, ये आया।
जी
उसके
जी
बाद मेरा संग्रह आया काल वृक्ष की छाया छाया में, ये सारांश प्रकाशन ने छापा। उसके बाद मेरी प्रिय कविताएं आई, उसके बाद जवाहर टनल जिसके हमने अभी चर्चा की,
जी
जवाहर टनल के बाद जलता हुआ पुल आया, और
जी
जलता हुआ पुल के बाद मेरा नील गाथा इस वर्ष 7वां कविता संग्रह है या
जी
8वां है, और ये महाकाव्य है। अभी
जी
कश्मीर में हुआ क्या है, कश्मीर का महाआख्यान क्या है, और ये कश्मीर का पूरे कश्मीर को एक कथानक के रूप में लेना, कश्मीर के जन्म से लेकर के जो उसका आख्यान में वर्णन मिलता है, कश्मीर के
जी
अंतर्विरोध, कश्मीर के संघर्ष, कश्मीर की अस्मिता, कश्मीर के लेकर विश्व की ईर्ष्याएं, कश्मीर को हड़पने की चालबाजियां, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें, फिर इतिहास, फिर प्राक इतिहास, फिर लोक कथाएं, लोक गाथाएं, लोक गीत से लेकर लेकर इतिहास से लेकर के 1990 में जो हुआ निर्वासन हमारा, और वहां तक का ये वितान, इसका कथानक फैला हुआ है। और मैंने ये चूंकि कश्यप ऋषि कश्मीर के निर्माता कहे जाते हैं आख्यान के, से कश्मीर को बसाया कश्यप ऋषि ने, इसलिए कश्मीर कहलाता है, और कश्मीरा देवी थी, तो कश्यप ऋषि का पुत्र हमारे नीलमत पुराण में है नीलनाग, तो मैंने नीलनाग को नायक बनाया कश्मीर का। नील कैसे कश्मीर को आदि से आज तक देखता है, आख्यान से वर्तमान तक जो देखता है, एक तो उसका देखना हुआ, वो लड़ता है, वो भोगता है, वो दृष्टा है, और वो हर युग में जिंदा है, हर युग में नीलनाग चलता है। आख्यान में भी नीलनाग है, प्राग इतिहास में नीलनाग है, लोक कथाओं में नीलनाग है, फिर इतिहास में है, श्री कृष्ण कश्मीर आते हैं महाभारत से पहले तब नीलनाग है, भगवान राम लंका से माता जो महाकवि निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखा, उसमें जो शक्ति है उसको वो कश्मीर भेजते हैं हनुमान जी के साथ, तब
जी
वहां भी नीलनाग है। फिर आपका जो महाराजा कनिष्क के युग में शासनकाल में कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा हुई, तीन तो हुई थी बिहार में, नालंदा में, मिथिला वगैरह उन जगहों में, तो चौथी हमारे यहाँ हुई, तो यहाँ महायान बना। फिर कश्मीर से ही कश्मीरी जो पंडित हैं वही भिक्षु बने, भिक्षुणिया बने, वो चीन चले गए, वो खोतान चले गए, मध्य एशिया गए, कूच आ गए, आपके ये अभी एक काव्य आया है ना, इस पर बौद्ध भिक्षु हमारे है, मैं अभी नाम याद है, नाम भूल रहा हूं मैं, तो इस तरह कश्मीर ने, कश्मीर के रास्ते से पूरे मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, तिब्बत, चीन, खोतान और ये उज्बेकिस्तान, सारा आपका ये हम ले गए थे हमारे पूर्व, और वहीं से तिब्बत गए, तिब्बत से वो चलकर बर्मा से म्यांमार कहते हैं वहां तक गए, फिर सियोल तक ज्ञानभद्र गए, फिर सियोल से आगे चीन जापान तक कश्मीरी पंडित जो भिक्षु थे, ये वहां भी नीलनाथ को नायक है। उसके बाद जो मुगल आए, फिर इस्लाम का कश्मीर में आगमन हुआ, फिर जो हमले हुए, फिर जो मंदिर टूटे, फिर जो धर्मांतरण हुए, फिर जो दो दो संस्कृतियों का संवाद हुआ, संघर्ष हुआ, उसके बाद जो निर्वासन हुए, फिर सिखों का राज आया, फिर डोगरा वंशों का राज आया, फिर नपे, तो इस तरह ये बहुत महाआख्यान जो मैंने लिया ये नील गाथा में है जो अभी आया, इसकी खूब चर्चा आपने स्वयं कहा। जिन्हें जिन मित्रों को इसमें रुचि हो जानने की, कश्मीर को जानने की इस नील गाथा के माध्यम से, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ ये amazon.in पर उपलब्ध है, आपको 2 दिन में मिलेगी,
जी,
amazon.in से आप मंगवाइए, आपको कश्मीर का पूरा फलक, हर डायमेंशन इसका एक महाआख्यान मिलेगा आपको। तो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, ये इसलिए भी जरूरी है कि हमने पिछले दिनों में, वर्षों में देखा कि हजारों कश्मीर पर किताबें लिखी गई, हजारों लोगों ने आंखें देखी गई, वहां गांव में 2-4 दिन गए, 5 दिन गए, 10 दिन गए, वहां बैठे, होटलों में बैठे, शिकारा राइडिंग की, यहाँ वहां लोगों के घरों में गए, उनकी बातें सुनी, गोश्ताबे खाए, बादाम लेके आए और शॉल उड़ा उड़ा के आए, 4 किताबें पढ़ी तो 5वीं कश्मीर पे हुए, फिर विशेषज्ञ कहलाए। तो उनको एक तरफ करके आप नीलगाथा पढ़िए, ये एक नील गाथा मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता है, आप इसकी समीक्षाएं देखें, ये भारी पड़ती है उन पर। तो इसलिए जो निर्वासन का साहित्य है, ये भारतीय साहित्य, भारतीय कविता का एक नया अध्याय है, एक नया आयाम है, निर्वासन चेतना की कविताएं, निर्वासन चेतना का साहित्य, इसमें उपन्यास है, इसमें आपको डायरियां मिलेंगी, इसमें आपको कहानियां मिलेंगी, मैं अपनी ही नहीं कह रहा हूं, मैं समूचा कह रहा हूं कि इसमें सैकड़ों की, ये अंग्रेजी में खूब लिखा गया, हिंदी में लिखा गया, उर्दू में लिखा गया, कश्मीरी में लिखा गया, और खूब खूब लिखा गया, और ये एक जो बहुत ही विपुल साहित्य रचा गया है, ये भारतीय साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा योगदान भी है, नया अध्याय है।
और सर, निर्वासन साहित्य के प्रतिनिधि कवियों में मैं तो आपको मानूंगी। और
आपका
आप
धन्यवाद।
जी सर, और सर थोड़ा सा विषय को बदला जाए, मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी कि आपकी किसी कहानी पर बॉलीवुड की फिल्म शीन भी बनी थी, तो मैं फिल्मों और साहित्य के संबंध के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि एक साहित्यकार के रूप में आपका क्या अनुभव था फिल्मों में।
साहित्यकार के रूप में मेरा वही अनुभव है जो किसी भी मुझसे पूर्ववर्ती साहित्यकार का रहा है फिल्मों का, क्योंकि उसका एक कारण ये है, जब आप साहित्यकार के रूप में साहित्य लिख रच रहे होते हैं,
जी
कविता लिख रहे होते हैं, तो जब वो लिखने का जो क्षण है, लिखने का जो पल है, वो पल होता है निर्वैयक्तिक, यानी आप उस समय के पॉइंट ऑफ टाइम में उतरते हैं, आप उस समय
जी
का हिस्सा हो, उस समय में जब आप उतरते हैं, जैसे रंगमंच मंच पर एक रंगकर्मी अपने पात्र जो उसको प्ले करना है उसमें वो परकाया प्रवेश करता है, उतरता है, जैसे आप भावना है, डॉक्टर भावना गई आपका नाम है, आपको मान
जी
लीजिए कि आपको राधा का रोल करना है, आप जब उस राधा के रोल स्क्रिप्ट लेंगे तो रंगमंच पे आते ही आप राधा में घुस जाएंगी, आप
बिल्कुल
डॉक्टर भावना गई नहीं रहेंगी,
जी
आप राधा होंगी वहां। तो ये
बिल्कुल
जो राधा होना होता है ना, वो साहित्य में अक्सर यही होता है, जब साहित्य रचा जाता है तो आप उस क्षण में होते हैं, यानी आप होते हैं, आपका सृजन होता है, और
बिल्कुल
ये रिश्ता। हाँ, और फिर जब आपने रच लिया तो आप उससे अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टा अलग होता है, सृष्टि अलग होती है, रचना अलग। ये जो फिल्में हैं, फिल्मों में क्या दिक्कत है, ये अलग माध्यम है, यहाँ कई कई माध्यम आकर के मिलते हैं,
जी
यहाँ लेखन स्क्रिप्ट आपका है, चित्रपट कथा मिलती है, यहाँ अभिनेता है, यहाँ अभिनेत्रियां हैं, यहाँ आउटडोर शूटिंग्स हैं, संगीत है, कला है, सब तरह की एडिटिंग वेडिटिंग, कई कलाओं का एक संगम होता है। और
जी
जब एक साहित्यकार जाता है, जो एक स्वायत्त तो होता है, तो उसका इसके साथ वो रिश्ता, तालमेल शायद नहीं बैठता है, नहीं बैठा है आज तक, बहुत कम अपवाद हो सकते हैं
जी
समूचे विश्व में। तो इस कारण से वो एक अनुभव है कि साहित्य और फिल्मों का संवाद ये अलग से विषय है, कितना
जी
संभव है, कितना दुष्कर है, कितना बन सकता है। आज तो फ्यूचर फिल्म्स देखिए आप, ऐसा नहीं है कि उपन्यासों पे कविताएं फिल्में नहीं बनी है, बनी है। और मेरा जो अनुभव है, मेरी कहानी जो गई, तो जिस तरह से कवि, मान लीजिए मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरी कहानी का मूल करेक्टर एक पेड़ था, एक वृक्ष था,
जी
और वृक्ष था, और वृक्ष उस कहानी के केंद्र में था।
जी
और हुआ ये कि आतंकवाद के चलते दूल्हे को आना था, दुल्हन विवाह का दिन है, वो आ रहा है, वो बम धमाके में मारा जाता है, आतंकवादी उसको मारते हैं, तो गुरु जो जो पुरोहित बैठा है उन तक सूचना नहीं होती है कि वो मारे गए हैं। वो कहते हैं यार मुहूर्त निकला जा रहा है, तो मुहूर्त पकड़ने के लिए दुल्हन से कहो कि इस वृक्ष के इर्द गिर्द 4-5-7 फेरे लगाए, ताकि मुहूर्त हम बांधे रखें, पकड़े रखें, तब तक दूल्हा आ जाएगा। ये जब फेरे लेती है उस पेड़ के, तब तक न्यूज आती है, समाचार आता है कि दूल्हा मारा गया। अब यहां से क्राइसिस स्टार्ट होता है दुल्हन का, वो शॉक में जाती है, सदमे में जाती है, वो ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि वो विधवा हुई है।
जी
उसका एक अलग संबंध उस पेड़ के साथ जुड़ जाता है। अब ये आगे क्या होता है, वो लंबा हो जाएगा। मैं ये कहूंगा, जब ये फिल्म आने के लिए गया लोगों के पास, तो उनसे ये बना ही नहीं, उन्होंने इस पेड़ को ही काट डाला फिर।
जी
तो
अच्छा
यानी कहानी की हत्या, मूल हत्या वही हुई। अब
जी
मैं एक अनाड़ी आदमी हूं, आप कह सकते हैं आप भी तो थे वहां, मैं क्या जानता। मैंने कहा ये नहीं होगा डॉक्टर साहब, ये नहीं होता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं होगा तो। इसलिए वो फिल्म जो मूल रूप से जो उसकी परिकल्पना थी, वो नहीं बन सकी।
ठीक
देखो, लेख रचनाकार के जो कृति है, उसकी स्वायत्तता संपूर्णता में नहीं बचती है, नहीं रहती है, नहीं रह पाती है, शायद संभव भी नहीं है वहां।
नहीं है संभव जी बिल्कुल सर सर कोई कविता आप सुनाना चाहें
मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, ये जवाहर टनल से,
जी
इसका
सर
शीर्षक है पुल पर गाय।
जी
सब तरफ बर्फ है खामोश, कश्मीर की कल्पना करिए, सब
जी
तरफ बर्फ है खामोश, जले हुए हमारे घरों से ऊंचे हैं निपत्ते पेड़, एक राह भटकी गाय पुल से देख रही है खून की नदी, सब तरफ बर्फ है खामोश, जले हुए हमारे घरों से ऊंचे हैं निपत्ते पेड़, एक राह भटकी गाय पुल से देख रही है खून की नदी, रंभाकर करती है आकाश में सुराख, छींकती है जब भी मेरी माँ यहां निर्वासन में, छींकती है जब भी मेरी माँ यहां निर्वासन में, उसे याद कर रही होती है गाय, इतने बरसों बाद भी नहीं थमी है खून की नदी, उस पार खड़ी है गाय, इस पार है मेरी माँ, और आकाश में गहराता जा रहा है सुराख। ये कविता है।
सर कितना दर्द है, पशु पक्षी और इंसान तो दुखी हैं ही, कुदरत भी मानो रो रही है।
यहाँ तक कि जब वर्षा होती है निर्वासन में, तो वर्षा होती है तो आपके आपको अपने घर की वर्षा याद आती है, कश्मीर की वर्षा याद आती है, गाँव की, खेतों की, पेड़ों पर टप टप करके बूंदों की। देखिए एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। छलनी छलनी आकाश से, छलनी छलनी आकाश के ऊपर से बह रही है यादों की नदी। छलनी छलनी आकाश के ऊपर से बह रही है यादों की नदी। ओ मातृभूमि, क्या इस समय हो रही है मेरे गांव में वर्षा। ये इतनी ही छोटी सी कविता है। यानी जब यादें हैं ना, वो आपका आकाश छलनी छलनी हो चुका है, जो ही उसके ऊपर से कोई याद आती है तो आपको लगता है वर्षा हो रही है,
बिल्कुल
दुख की वर्षा।
कुछ भी होता होगा तो आप लोगों को वही की याद आती होगी, बिल्कुल समझ सकती हूं। बिल्कुल बचपन जवानी वृद्धावस्था सब छिन गई आप लोगों की तो।
जी जी जी।
और सर कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? इतना अच्छा लग रहा आपसे बात करते हुए सर, और पता नहीं लग रहा कि कितनी बातें और आपसे पूछूं। ये मेरा अनुरोध आपसे रहेगा कि फिर आप जल्दी हमारे चुभन के कार्यक्रम में आए और अपनी बात कहें। अभी आज तो आपके कवि रूप को ही हम,
आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे चुभन महसूस हुई होगी हुई, लेकिन मेरी बातों से ये संभव है कि चुभी होगी मेरी बात।
चुभनी चाहिए सर, चुभनी चाहिए।
ये सच इतना हमारा सच, ये पता है, ये पुष्किन और दोस्तोयेवस्की के साहित्य पर टिप्पणी करते हुए एक इतालवी कवि आलोचक ने कभी कहा था
जी
कि उनके यहाँ, पुष्किन और दोस्तोयेवस्की के यहाँ
जी,
सच इतना ज्यादा सच है कि झूठ लगने लगता है और फिर विस्मित हो जाते हो जब आपको पता चले सच तो वास्तव में था
जी।
मैं वहां से सूत्र लेकर आपसे कह रहा हूं, हमारे निर्वासन का, हमारी जलावतनी का, जिहाद के चलते हमको तबाह किया गया, पाकिस्तान समर्थित, जिसे आप आतंकवाद कहते हैं, ये उग्रवाद नहीं है, ये सीधे सीधे जिहाद है भाई। ये कश्मीर में भारत का विरोध है, वहां बहुलता का विरोध है, इसीलिए तो आप अल्पसंख्यक हिंदुओं को जो बचे हुए उनको मार रहे हैं ना, वो तो साफ कहते हैं हमको ये काफिर है, उनको निकाल बाहर करना अपने यहाँ। तो ये जो सच है ना, ये सच इतना ज्यादा सच हो सकता है आप देशवासियों के लिए कि उनको ये झूठ लगता है। अरे यार ये पता नहीं क्या झूठ बोलते हैं, अतिशयोक्ति है, ऐसा थोड़ी होगा। आप अपने यहां से, अपने एंगल से ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि आप ये कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कल्पना हमने भी नहीं की थी कि हमारे साथ ये होगा, लेकिन जब ये हुआ, ये चाहे कितना ही ज्यादा सच हो, झूठ लगने की हद तक का सच हो, लेकिन मेरे लिए तो सच ही है ना, मेरे लिए तो वास्तव है ना, यथार्थ है ना। लेकिन जब आप उस यथार्थ तक पहुंचेंगे, जब आपको लगेगा कि ये तो वास्तव में हुआ है, तब आपका मुख खुला का खुला रह जाएगा। तो इसलिए कश्मीर से आया हुआ निर्वासन का साहित्य जो है, मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा कि इसे पढ़ें, और इसे पढ़कर जो देश पर, इस भारत देश की जो अस्मिता है, जो सांस्कृतिक अस्मिता है, जो भारत देश सह अस्तित्व और हमारे सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, और उसकी सत्ता पर प्रहार है, उसे मिटिया मेट करने पर तुली हुई शक्तियों की वजह से अग्निशेखर हो या मुझ जैसे सैकड़ों लेखक, कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, हम ये भी बताना चाहते हैं कि खाली ये निर्वासन की चेतना या जिनोसाइड की चेतना हमारे साहित्य में ही नहीं आई, ये हमारे चित्रकारों की पेंटिंग्स को आपको देखना पड़ेगा। वो भी देखिए क्या क्या विषय बदल गया। संगीतकारों ने सॉन्ग्स इन एग्जाइल लिखे, निर्वासन के गीत उन्होंने कंपोज किए, उसमें देखना पड़ेगा। हमारे शिल्पकार मूर्तिकारों की के मूर्ति शिल्प आप देखिए, तो जितनी भी कला है, नाटक देखिए, अभिनय देखिए, मैंने जितना भी कहा आपको, जितनी विधाएं कलाओं की हैं, उन सभी कलाओं में ये सब आया है। और हमारे डॉक्यूमेंट्रीज जो आई हैं अभी तक, हालांकि बड़ी कोई फिल्म नहीं आई है, अब हमको एक उम्मीद है कि इसी आने वाले कुछ दिनों में या दिवाली के बाद या 2-3 महीनों में एक फिल्म आ रही है, कश्मीर फाइल्स।
जी
हमको लगता है कि शायद उसमें हमारी बात को सही ढंग से और बिना किसी डाइल्यूशन के रखा गया है, ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि
जी
धोखा बहुत हुआ हमारे साथ।
बिल्कुल
कश्मीर को लेकर के फिल्में बनाई गई, तो उसमें फिर चाहे वो हैदर हो, चाहे वो और कोई फिल्म हो, तो जो कुछ कहा गया कि ऐसा होगा, वो वैसा नहीं मिला। और वो फॉर्मूला होते हैं, तो इसलिए हमारा साहित्य फॉर्मूलाओं का साहित्य नहीं है। जो है वो हमने कहा, और जिस नियत से कहा, वो नियत क्या है हमारे साहित्य की, कि जो हमारे साथ हुआ वो देश में किसी और के साथ ना हो, जो हमारे प्रदेश में हुआ वो उत्तर प्रदेश में ना हो, मध्य प्रदेश में ना हो, कहीं
बिल्कुल
ना हो, किसी कहीं ना हो। इसलिए अगर वो कहीं नहीं होने देना है, तो आपको वास्तविकता की समझ और उसकी जानकारी चाहिए, और उस जानकारी के लिए साहित्य, अगर आप साहित्य अनुरागी हैं, साहित्य से जानना चाहते हैं, तो निर्वासन का साहित्य जरूर 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 पढ़िए।
इतना भावुक, कितना मर्मस्पर्शी संदेश आपने सर दिया, और मैं भी यही कहना चाहूंगी हमारे श्रोताओं को कि आपके संदेश को हम सब माने, और कुछ ना कर सके तो कम से कम समझे तो इस समस्या को और आप लोगों के दर्द को। सर, सारा दिन हम कहते रहते हैं कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, लेकिन जो हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ तो उनको हम अपना मानने से क्यों इनकार करें सर?
ये दर्द पूरे देश का बनना चाहिए। ये समस्या खाली कश्मीरी पंडितों की नहीं है,
नहीं है
इसको
सर,
ऐसे ही रहने दिया तो ये फैल जाएगा, और ये बाढ़ की तरह सब पूरे देश के सह अस्तित्व और संस्कृति को लील जाएगा।
हो ही रहा है सर, काफी हद तक अब हो भी चुका है, ये सब चीजें हो रही हैं, हर प्रदेश में हो रही हैं आप देखेंगे।
ये तो संकट है, ये नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए इसके लिए क्या हो चुका है उसकी जानकारी चाहिए, और वो आपको हमारा साहित्य बहुत ही। अब देखिए एक और बात बताता हूं,
जी सर बिल्कुल बिल्कुल
जब जब खबरें, जब समाचार कविता में आते हैं, साहित्य में समाचार आपको मिलेगा, मान लीजिए, तो उसका
जी
मतलब यह है कि आपका जो देश में समाचार तंत्र है, माध्यम है, मीडिया है, सच को उस मीडिया से विश्वास उसका उठ चुका है, वो अब कलाओं में आ रहा है, क्योंकि कलाओं पर विश्वास बचा हुआ है।
जी
कविताएं झूठ नहीं बोलती,
बिल्कुल सर
चित्रकारी झूठ नहीं बोलती, संगीत झूठ नहीं बोलता, मूर्ति शिल्प झूठ नहीं बोलते, पेंटिंग्स झूठ नहीं बोलती। इसलिए अगर जो भारत के कश्मीर से जो हौलनाक, खतरनाक, भीषण घटनाक्रम, वो अगर साहित्य में आया है, तो ये मानना चाहिए कितना प्रामाणिक है। अब वो
जी
समाचार भी साहित्य के माध्यम से आ रहे हैं, तो क्योंकि साहित्य ही एक प्रामाणिक विश्वसनीय माध्यम है, रहेगा और था।
जी और हम सब पूरे देशवासियों को, आप जैसे साहित्यकारों का हम लोग आभारी हैं हम लोग सर, कि आपने इतना अच्छा लिखा, और हम लोग अगर ना पढ़े तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। और बहुत ही अच्छा लगा सर, अभी भी बहुत सारी बातें हैं कि जो लग रहा आपसे मैं पूछूं हम के कार्यक्रम में आए, और मैं आज के कार्यक्रम को ये नहीं कहूंगी कि हम समाप्त कर रहे हैं, बल्कि हम इसे और आगे बढ़ाएंगे सर।
कार्यक्रम हमारा असमाप्त है, ऐसा कहें, फिर मिलते हैं।
बिल्कुल असमाप्त है, बिल्कुल सर, बहुत सही आपने कहा,
धन्यवाद धन्यवाद
साहित्यकार
भावना भावना,
हम
बहुत बहुत
ऐसा ही
धन्यवाद,
होता है।
आपने आपने बहुत बोलने का मौका दिया। आप इतने खुद संवेदनशील हैं और सजग हैं, सचेतन हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा स्नेह आशीष, आपको यशस्वी हो और जीते रहो।
बहुत बहुत आभार सर, प्रणाम सर।
प्रणाम।